مشکل الفاظ کی وضاحت. اللہ، اللہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ الف لام ہا، الہ، اور پھر یہ کہ بعض اوقات پھر اس پر جو ہے وہ حمزہ، یعنی اعراب لگ جاتے ہیں تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو الہ سے جو ہے وہ اللہ ہے. دوسرا لفظ ہے نور، اللہ نور. نور جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون وورا. شاباش. یہی یہ لفظ جو ہے یہ روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ روشنی کے لیے اور لفظ بھی ہمیں ملتے ہیں. آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، کسی کو یاد ہے کیا لفظ آپ نے روشنی کے لیے پڑھا؟ ہاں شاباش، بالکل، بہت اچھا کہا کہ ضیاء. ضیاء جو ہے، ضیاء ہے یا نار ہے، ان دونوں کا مادہ بھی، جیسے ضیاء کا ذو ہے ضاد واو حمزہ، اور نار کا بھی نون واو را ہے. تو جو ہے وہ نور جو ہے اس روشنی کو کہتے ہیں جو چیزوں کو ظاہر کر دے، وہ پھیلنے والی روشنی جو اشیاء کے دیکھنے میں مدد دے. پھر یہ نور مادی بھی ہوتا ہے اور معنی دونوں لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں کہ جیسے جو ہے وہ سورج کا نور ہے، سورج کی روشنی ہے، ہے نا؟ تو اور معنی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو دین کا نور ہے. سورج کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے نا، لیکن دین کی روشنی جو بصیرت ہے، جو ہدایت کا نور ہے، یہ نظر نہیں آتا. تو اس طرح مادی اور معنی، معنی کو حسی بھی کہتے ہیں. بعضوں کہتے ہیں حسی کا کیا مطلب ہے؟ سیم بات ہے کہ جو محسوس کیا جائے. تو یہاں پہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے یہ ہے نور. اور پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کمشکاتن، کمشکاتن. اچھا مشکاتن جو ہے اس کا روٹ ہے شین کاف و، شین کاف و، اور شین کاف و آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں. یہ لفظ آپ نے پڑھا تھا، کب پڑھا تھا؟ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، ہے نا؟ کہ میں اپنے غم اور جو بھی میرا حزن ہے، ملال ہے، اس کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں. ہاں، یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی. اور شین کا و جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اظہار غم کے بھی ہوتے ہیں. اور اصل میں شین کا و چھوٹے سے مشکیزے کو کھولنا اور اس کے اندر کی چیز کو ظاہر کرنا، اس کے لیے ہوتا ہے. چھوٹا سا مشکیزہ کھولنا اور اس کے اندر کی چیز کو ظاہر کر دینا. تو ادھار کے معنی لے کر یہ لفظ جو ہے وہ دل کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ لفظ جو ہے یہ تاک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تاک آپ نے یہ دیکھے ہوں گے، گھروں میں تاک بنے ہوئے جس میں تین طرف سے وہ کور ہوتا ہے، ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے. مثلاً آپ جیسے یہ کھڑکی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ یوں آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں کہ کھڑکی میں تھوڑا سا اس طرف سے بھی دیوار ہے. آپ ادھر دیکھیں، یہ اس طرف بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے، تو تین طرف سے وہ کور ہے نا، ایک طرف سے وہ کھلا ہوا ہے نا تاک. تو یہ بعض دیہی علاقوں میں باقاعدہ تاک سے بنائے جاتے ہیں. اور وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ یعنی ایسے جیسے یوں کہ اوپر سے بھی دیوار، اوپر بھی دیوار ہے، سائڈوں پہ بھی ہے، اور آگے سے اتنا سا جیسے یوں کھلا ہوا ہے. اور وہاں پہ وہ اپنا نا لیمپ یا دیا رکھتے تھے یا موم بتی رکھتے تھے. اور اس کو رکھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہر طرف سے جب وہ تین طرف سے کورڈ ہے تو ایک طرف سے کھلا ہوا ہے تو روشنی جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو کر جو ہے نا وہ ملے. تو وہاں پہ تو زمانے میں جیسے روشنی بلب وغیرہ نہیں تھا. اور میں نے وہ جو ہے وہ تاک جو ہے وہ یعنی اپنے جیسے गांव में हवेली जो मेरे जहाँ दादा दादी रहते थे उसमें भी मुझे याद है कि वो लोग उनके पास ऐसे एक जगह बनी हुई होती थी। तो बहरहाल मुख्तसर बात क्या है कि शीन का वो मिशकीजे के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अब आप कहेंगी कि मिशकीजा और गम का इजहार करना, इसका क्या मतलब है? जिस तरह मिशकीजा पानी से भरा हुआ होता है ना, आप उसको एक तरफ से खोलते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जब दिल गम से भर जाता है ना, और एक तरफ से जब दिल को आप खोलते हैं तो दिल को बकायदा नहीं आप खोलते, मुंह खोलते हैं आप अपना, बाकी तो हर तरफ से बंद है। तो गोया के आपने अपने गम का उसको बाहर निकालकर इजहार कर दिया, आले की मिसाल है ना, आला, आला यानी ताक, ताक कहना चाह रही हूं। इसी तरह मिशकात जो है ये ताक है, गोया के मिशकीजा है, और ये जो ताक है गोया के ये मोमिन का दिल है, ठीक है। अच्छा दूसरा लफ्ज है मिशकात के बाद मिसबाह। मिसबाह का रूट क्या है? शाबाश, स्वाद बाहा सुबहुन से है, और ये सुबह जब होती है तो क्या होता है, रोशनी फैल जाती है ना। तो मिसबाह का लफ्ज जो है ये चिराग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सूरज को भी मिसबाह कह देते हैं, तो रोशनी, रोशनी के लिए, सुबह होने के लिए। अहम लफ्ज है इसके बाद जुजाजा। जुजाजा, जुजाजा जो है ये जो है ये अहम लफ्ज है, और हो सकता है बाज लोगों के लिए ये बिल्कुल नया भी हो। और इसका रूट है जा जीम जीम। क्या रूट है इसका? जा जीम जीम। और ऐसे शीशे को कहते हैं जिसमें आर पार देखा जा सके। क्योंकि शीशे ना दो किस्म के होते हैं, आप देखें कि बाज घरों में शीशे लगे हुए होते हैं लेकिन साथ ही फूल बना हुआ होता है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, फूल बने हुए हैं। अभी आप देखें, आप जिस बिल्डिंग में आप बैठी हुई हैं यहाँ पे शीशे की सारी खिड़कियां हैं। अब ये ऐसा शीशा है जिसमें आप आर पार देख सकती हैं, आप सामने अपने देख रही हैं ना, तो इसको कहते हैं जुजाज, यानी ऐसा शीशा जिसमें आर पार देखा जा सके, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और वो शीशा जिस पर फूल बने हुए हैं, नक्शो निगार है, पेंट हुआ हुआ है, उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। और वैसे तो देखें तो कुरान में शीशा जो है, एक तो ये लफ्ज है और एक कवारीर, कवारीर का लफ्ज भी सूरत दहर में आता है ना, तो जिसमें नक्शो निगार चीजें जो है वो बनी हुई होंगी। अच्छा फिर इसके बाद है कौकब। कौकब जो है ये कहते हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सितारे के लिए। और आप देखें कि सितारे जो हैं वो क्या करते हैं, रोशनी का ये जरिया है। वैसे खुद ये रोशन नहीं होते, ये सूरज से रोशनी लेते हैं और इसके बाद जो हैं ये रोशनी देते हैं। रात के वक्त जब सूरज नहीं होता तो हमें सितारे जो है वो नजर आते हैं। तो कौकबुन जो है इसके ऐसे तारे को कहते हैं जो बड़ा भी हो और चमकदार भी हो, ताबनाक भी हो। हर सितारा कौकब नहीं है, बल्कि कौकब ऐसा सितारा जिसकी दो सिफात खास तौर पे हैं, बड़ा हो और फिर चमकदार हो। अगला बहुत अहम लफ्ज है दुर्रियुन। दाल रारा, इसके अंदर, दाल रा रा के अंदर दो चीजें खास तौर पे पाई जाती हैं, नंबर एक चमक, नंबर दो ज्याति, चमक और ज्याति। तो दुर्रियुन क्या मतलब है? चमक और ज्याति, जब इसमें दो तसव्वुर पाए जाते हैं तो बहुत ज्यादा चमकदार। ज्याति के साथ आप क्या तर्जुमा करेंगी? बहुत ज्यादा चमकदार, रोशन भी है बहुत ज्यादा, चमकने वाला भी, चमक दमक भी रखता है। अच्छा आपने पीछे पढ़ा था दाल रारा दूर करना, दर है ना, तो आप कहेंगी कि फिर यहां तो आपने दूर करना नहीं बताया। तो असल में जो बहुत ज्यादा रोशन सितारा होता है या बहुत जो ज्यादा रोशन चीज होती है वो अंधेरों को दूर करती जाती है, दूर कर देना। फिर इसी तरह यू कदू, आप पहले पढ़ चुकी हैं, क्या रूट है इसका? हाँ कुछ आप लें और कुछ आप वापस करती जाएं, जो अब माशाल्लाह आपके सीने में और दिल में इल्म का समंदर मौजन है, तो यू पदू का रूट क्या है? वो काफ दाल। मानी क्या है? जलाना, रोशन करना। शजारतिन, शीन जीम रा। शजर का लफ्ज जो है ये दरख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखें कि दरख्त जो है खास तौर पे, यानी शजर, उर्दू में हम दरख्त का लफ्ज जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मुजक्कर होता है या मुअन्नस? मुजक्कर होता है ना। तो उर्दू में ये लफ्ज मुजक्कर है, लेकिन अरबी जबान में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या है? ये मुअन्नस है। तो आप कभी शजर भी पढ़ेंगी और शजरतिन भी पढ़ेंगी। तो शजरतिन जैसे आया है तो एक दरख्त, यानी शजरतुन वाहिद है और शजर जब आएगा तो जमा है उसकी। ता जब छोटी अलग से आएगी तो ये वाहिद है, और जब साथ इसके शजर आए और ता हटा दी जाए तो ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर वो नबातात जिसका तना हो उसको शजर कहते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो जो दरख्त है वो जमीन पर ही फैला हुआ हो, ये भी हो सकता है वो बुलंदी पे चला जाए जिसका तना हो, है ना। तो बहरहाल शजरतुन आम, हर तरह की नबातात पर इसका जो है वो इतलाक जो है वो किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसका बहुत अहम बड़ा सा तना हो तो उसको ही शजर कहेंगे, बल्कि हर तरह का की जो नबातात है उसके लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, फिर आप देखिए कि अगला जो अहम लफ्ज है वो है मुबारकतिन, शाबाश। इसका रूट तो आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बताया कि इसका रूट है बारा काफ। और अब जो अहम बात समझने वाली है कि इसके मानी क्या है। वैसे ये लफ्ज आप पहले ही बहुत दफा पढ़ चुके हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मैं आपको नया बताऊं। दरअसल ये ऊंट के सीने को कहते हैं। आप देखें हड्डी, सीना, पत्थर, इस तरह की चीजें बहुत, क्योंकि अरबों के यहाँ ये चीजें बड़ी ज्यादा तादाद में पाई जाती थी ना। तो बारा का जो लफ्ज है ये कहते हैं ऊंट के सीने को, और इसके साथ ही ये लफ्ज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे ऊंट कहीं जाकर जो है वो बैठ जाए। अब ऊंट आके बैठेगा तो उसके यानी जैसे ऊंट का सीना है, गोया के ऊंट का सीना ही सबसे बड़ी चीज है ना। तो ऊंट का जम जाना, बैठ जाना, तो अरब लोग जो थे सीने को बिरका भी कहते थे, बराका भी कहते थे। और ऊंट अगर अपने घुटने रख कर बैठ गया, यानी बैठा तो गोया कि अब सीना ही सीना उसका नजर आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब था कि ऊंट अब साबित कदम हो गया, जम गया है। और ऊंट का बैठना वो समझते थे कि ये बड़ी बरकत की बात है, बड़े फायदे की बात है। इसी तरह बरकल बईर, इसका जो है वो मानी जो है वो क्या है कि ऊंट घुटने रख कर बैठ गया। या अगर इब तरकू फिल हर्ब, अरब लोग जब जंगों पे जाते थे तो उनके साथ ऊंट होते थे, ऊंट अगर जाकर बैठ गए तो इसका मतलब है अब तो जमकर लड़ाई करनी पड़ेगी, ऊंट तो उठेगा भी नहीं ना इतनी जल्दी। तो ऊंट का बैठ जाना, जमना, मुस्तकिल मिजाजी, साबित कदमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। गोया के बहादुर ही हैं जो कि साबित कदम रह सकते हैं। तो बिरका जो है पानी जमा करने की जगह को भी कहते हैं, हौज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऊंट जमकर बैठ गया तो पानी जहां जमा करेंगे तो खैर मिलेगी आपको। तो इसी तरह बरका लफ्ज किसी चीज में खैर इलाही साबित होने के मानी में भी इस्तेमाल होने लगा। बरकत का लफ्ज बारिश के पानी को भी कहते हैं, बारिश को भी वो बरकत कहने लगे। इसी तरह मुबारक, हर वो चीज जिसमें खैर हो और उसकी कसरत हो। इन्ना अनज़लनाहू फी लैलतिन मुबारका, तो जो लैलतुल कदर है वो मुबारक रात है, उसमें हर चीज की बड़ी कसरत है ना। तो बरा का लफ्ज जो है यानी बड़े वसी मानी में जो है वो इस्तेमाल होने लगा, जिसमें खैर भी है, बारिश भी है, पानी भी है, नेमते भी हैं, गोया के ज्याती है और बहुत ज्यादा ज्यादती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है जो है वो लफ्ज जैतूनतिन, है ना। और जैतूनतिन जो है इसका रूट क्या है, जा या ता, और ये जैतून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैतून आपको पता ही है कि वो तीन वज जैतून, फल को भी कहते हैं, दरख्त को भी कहते हैं, पत्तों को भी कहते हैं, तने को भी कहते हैं। हाँ, तेल के लिए भी और फल के लिए भी, हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शर्कियतिन, शीन रा काफ, शर्क और चमकदार चीज के लिए आता है। और सूरज मशरिक से निकलता है, जब सूरज मशरिक से निकलता है तो आप देखें वहां पे भी चमक चमक नजर आती है। इसी तरह गर्बियतिन का रूट क्या है, गैन राबा, गराबा डूबना, गुरूब होना। और जहां सूरज डूबता है तो वहां पे अंधेरा होता है। कौवा जो है, कौवा उसको क्या कहते हैं, गुराब, गुराब, काला स्या, अंधेरा गोया के। अच्छा, यकादू, कैफ या दाल, हाँ, इसका रूट जो है वो क्या है, कैफ या दाल, और इसके मानी क्या है। हाँ, तो वैसे ये काफ, असल में काफ या दाल जब अगर रूट आता है, कादा तदबीर करना, और कैद जो है वो तदबीर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यानी गोया के एक चीज जो है वो, गोया के आप तदबीर कर रहे हैं या वो चीज जो है वो करीब है। अगला लफ्ज है युदीउ, इसका रूट क्या है, दाद वो हमजा, रोशनी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जिया रोशनी को कहते हैं। और अब फिर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि फिर नूर में और जिया में क्या फर्क है। हाँ, शाबाश, क्योंकि नूर जो है वो भी तो रोशनी के लिए है ना, और ये जो जिया है ये लफ्ज भी रोशनी के लिए है। तो रोशनी के लिए बहुत से लफ्ज हैं, और इसमें और उसमें जो है वो क्या फर्क है। तो जिया जो है वो रोशनी है, वो जिसमें जो है ऐसी रोशनी जिसमें हरारत और सुर्खी भी हो, हरारत भी हो और सुर्खी भी हो। और नूर वो रोशनी है जिसमें रोशनी और चमक तो हो मगर हरारत, तपेश, रंग वगैरह में सुर्खी ना हो। तो नूर और जिया का फर्क क्या है कि नूर जो है कि ऐसी रोशनी जिसमें रोशनी है, चमक है, मगर हरारत, गर्मी नहीं है। और जिया जो है वो ऐसी रोशनी जिसमें जो है वो हरारत और सुर्खी भी मौजूद हो। इसके बाद है नार। हाँ, नार जो है इसका रूट क्या है, नून वो और रा। तो इसके मानी क्या है कि आपको पता ही है कि आग है ना, तो नार आग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोया के जैसे नारे जहन्नम, इसमें रोशनी तो होती है लेकिन हरारत, तपिश, सुर्खी ज्यादा होती है, तो इसको फिर नार कहा जाता है। फिर इसके बाद है, आप आ जाइए आयत नंबर 36 पर। 36 में लफ्ज है बुयूतिन, ये बैत की जमा है, और किस घर को कहते हैं जिसमें रात गुजारी जाए। शाबाश, तुरफा रूट इसका क्या है, राफाइन, युसब्बेहू, मानी क्या है, तेजी से गुजर जाना, तैरना, और जिक्र और तस्बीह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद है बिल गुदूवी वल आसाल। हाँ, तो गुदूवी जो है इसका रूट है गैन दाल वो, और सुबह के लिए आता है, सुबह का जो इब्तदाई हिस्सा होता है। और असाल, इसका रूट क्या है? वल आसाल, अलिफ स्वाद लाम, हमजा स्वाद लाम। असल में असल होता है जड़ को कहते हैं, तो शाम उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लातुल ही हिम रूट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो ये कहीं वो नजर भी नहीं आ रही, लेकिन इसका रूट क्या है? लाम हा वो। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि वो, अलिफ और या ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे लाम हा वो है। और लहव, हर उस चीज को कहते हैं जो बेमानी हो, बेमकसद हो, हर वो शगल, हर वो हरकत, हर वो काम लहव कहलाता है, जिसमें इंसान इतना मसरूफ हो जाए कि अल्लाह से गाफिल हो जाए, आखरत को भूल जाए। तिजारत, उनका रूट क्या है? ताजीमरा। हाँ, है तीन ही हरफी, लेकिन ताजीमरा तिजारत, और ये खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। बैउन, बा या आइन, बैउन। और ये लफ्ज जो है ज़वील अज़दाद में से है, और ज़वील अज़दाद का मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि उन अल्फाज को ज़वील अज़दाद कहते हैं जो बयक वक्त दो मानी पात, उसके अंदर दो ओपोजिट मानी पाए जाते हैं, खरीदना भी और फरोख्त करना भी, है ना। तो कभी कुरान मजीद में जब ये बे लफ्ज इस्तेमाल होता है, कभी खरीदने के लिए, कभी बेचने के लिए, कभी बयक वक्त, इसके अंदर दोनों मानी जो है वो पाए जाते हैं। फिर इसके बाद है ततकल्लबू। ततकल्लबू का रूट क्या है? काफ लाम बा, कल्ब दिल को कहते हैं, और दिल की हालत का तब्दील होना, इसी से ये इनकलाब के लिए भी आता है कि हालात बिल्कुल ही बदल जाए। और कल्ब की जमा क्या है? कुलूब है। आगे आप देख रही हैं कुलूब आया है। फिर इसके बाद आप आ जाइए आयत 39 पर, और 39 में लफ्ज है कसराबिन, सीन रा बा। और सीन रा बा जो है ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हर बेहकीकत चीज के लिए, हर वो चीज जो बेहकीकत है। असल में रेत के मैदान को कहते हैं, या रेत के जर्रात जो दूर से सूरज की रोशनी में ठाठे मारता हुआ, मौजे मारता हुआ पानी नजर आता है, गोया कि वो समंदर है, दूर से नजर आता है गोया कि पानी है, लेकिन आप करीब जाते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि वहां पे तो चमकती हुई रेत जो है वो नजर आती है। तो बिल्कुल ही इसी तरह ये लफ्ज जो है ये धोखे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं एक और बड़ी अहम प्यारी सी बात है वो भी आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखें कि एक लफ्ज के फर्क से जो है वो मानी में फर्क है। जैसे सराबा शराबा, है ना, तो सराबा क्या है? यानी मादा में एक हरफ की हरकत, एक हरफ की तब्दीली से मानी मुख्तलिफ हो गए। तो सराबा रेत चमकती हुई है, शराबा पानी, तो सीन की जगह जब आप शीन कर दें तो मानी में जो है वो तब्दीली पैदा हो जाती है। आप ऐसे पहले भी लफ्ज पढ़ चुकी हैं, जैसे दराजा दरा का, जैसे खला हनफा जनाफा, जैसे और भी आप इस तरह के लफ्ज पढ़ सकते हैं। तो हर पीने की चीज जो वाकई पीने के काबिल हो उसको शराब कहते हैं, और जो चीज नजर तो शराब आए मगर हकीकत उससे हटकर हो उसको शराब कहते हैं, धोखा कहते हैं, धोखे के मानी में इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज है बिकियातिन, बा काफ आइन, बा काफ आइन। और बा काफ आइन जो है, नहीं बल्कि बा काफ आइन नहीं है यहाँ पे, हाँ शाबाश, बिकियातिन जो है बा सात के मानी में है, तो इसका रूट है यहाँ पे काफ या आइन, काफ या आइन इसका रूट है। और इसके मानी है हमवार जमीन और हमवार मैदान। मानी क्या है इसके? हमवार जमीन या हमवार मैदान, या ऐसा रास्ता जो नीचे की तरफ जाता हो, नशेब की तरफ जाने वाला रास्ता। और आप देखेंगे इसके यानी नीचे की तरफ जो जाने वाला है, ہموار زمین، ہموار میدان، اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قیتن قائن کی جمع ہے. قیتن لفظ جو ہے یہ قائن کی جمع ہے. اور ویسے تو زمین کو بھی اگر آپ دیکھتی ہیں تو زمین جو ہے وہ جیسے ربوہ، بلندی والی زمین کو کہتے ہیں جو ربوہ اونچی ہے. ربا سود بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دولت کے اوپر مزید ایک دولت کا جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا. تو بہرحال قیا جب لفظ آئے گا اور جمع قیان بھی آتی ہے، قائن بھی آتی ہے، اور اس کے معنی ہے ہموار میدان. اور اگر سوار جو ہوتا ہے نا، جیسے کوئی سواری کرے اونٹ وغیرہ پر، وہ اس پر بیٹھ کر جم جائے، بالکل سیدھا ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل اس پر ہموار ہو گیا، جم گیا، اس کے لیے بھی آتا ہے. اگلا لفظ ہے ظمآنُ. زوئے میم اور حمزہ، اور زوئے میم جو حمزہ ہے اس کا معنی ہے جیسے آپ پانی پیتی ہیں تو دو پانی پینے کے درمیان کا وقفہ. پیاس کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں کہ پانی جب پیتی ہیں بیچ میں گیپ جو آتا ہے، دو پانی پینے کے درمیان جو گیپ ہے تو اس کو یہ کہتے ہیں. تو زوئے میم حمزہ اس کا روٹ ہے. اور جو آپ نے افطاری کی دعا یاد کی تھی وہ بھی ہے نا، ذہب الظماؤ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو پیاس جاتی رہی. ظمآن، ظمآن یہاں پہ پھر جو ہے جیسے مبالغے کا صیغہ ہے نا، جیسے آپ کہتی ہیں رحمان، اتشان، غدبان، بالکل اسی طرح سے ظمآن بہت زیادہ پیاسا. پھر ہے آیت نمبر 40 میں ظلمات روٹ کیا ہے؟ زوئے لام میم، اور واحد ہے، ظلمات جمع ہے. پھر اہم لفظ ہے لجین. ہاں، اس کا روٹ ہے لام جیم جیم لج، اور یا لج. اس کا سمندر کا اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پانی بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، جہاں پانی بہت زیادہ آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ پانی اگر کہیں زیادہ آتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سمندر بہت نیچے تک ہے، گہرائی تک ہے، تو سمندر کا گہرا ایسا سمندر کا گہرا حصہ کسی برے کام میں دور تک چلے جانا، یہ اس کا مفہوم بھی دیتا ہے. ہاں ہاں. اور اسی طرح ضد سے جھگڑنا، دشمنی میں استقامت دکھانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آگے تک چلے گئے، آپ نے بات کو چھوڑا ہی نہیں. تو کسی ممنوع کام میں بڑھتے چلے جانا، ضد کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے. اور آواز بار بار اگر آ رہی ہے، جا رہی ہے، پلٹ رہی ہے، آنا جانا آواز کا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال آتا ہے. لجت الصوت، عربی زبان میں یہ بڑا مشہور ہے یہ محاورہ، لجت الصوت. اسی طرح لجت البحر، سمندروں کی موجوں کا تلاتم، سمندر کی موجوں کا، لہروں کا بار بار آنا اور جانا. کیونکہ سمندر کی جو موجیں ہیں نیچے تک، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے. لجت اللیل، رات کی تاریکی کا آنا جانا، سخت ہونا. اچھا، اس کے بعد اہم اگلا لفظ ہے صحاب. سین ہا با صحاب، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بادل کے. اور صحاب کسے کہتے ہیں؟ بادل کو کہتے ہیں. اور ویسے اگر آپ دیکھیں تو اور بھی لفظ ہیں ہمیں جو بادل کے لیے نظر آتے ہیں، غمام ہے، موسرات ہے، مزن ہے، سیب ہے، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، عارض ہے. تو صحاب کے سین ہا با کے لفظی معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا، کھینچنا. تو صحاب ہر قسم کے بادل کو کہتے ہیں جسے ہوائیں اٹھا کر آسمان پر پھیلا دیتی ہیں. हर बादल की जो इब्तदाई शक्ल होती है ना उसको सहाब कहते हैं। फिर इसके बाद है अखरजा। खरजा का मतलब क्या होता है? निकलना। और अखरजा का मतलब होता है निकालना। नजला उतरना, अनजला उतारना। फिर इसके बाद है यदाहू। या दाल या इसका रूट है, या हर्फ इल्लत है, गिर चुका है। हाथ के लिए भी आता है और बेना आईदी हाथ के आगे के लिए भी आता है।